ओम शांति। हम सुन रहे थे बाबा ने 2500 साल के हमारे अरमान पूरे कर दिए हैं। जो हमारे अरमान रहे हैं, हर जीवन में रहे हैं, द्वापर युग से लेकर अभी तक, वो सारे अरमान बाबा ने हमारे पूरे किए। पूरे हुए हैं ना, सभी के हुए हैं ना, तो फिर अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है? अब हमें बाबा के अरमान पूरे करने हैं। बाबा को हम बच्चों से बहुत कुछ आशाएं हैं, और साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को कुछ जिम्मेवारियां भी दी है। बाबा का अवतरण हुआ है संगम पर, एक सुंदर संसार बनाने के लिए बाबा आए हैं, एक सुंदर संसार का निर्माण करने, और उसके लिए ही, इस कार्य के लिए ही बाबा ने यह अविनाशी ज्ञान यज्ञ स्थापित किया है, इस ये यज्ञ रचा है। तो इस यज्ञ के प्रति, भगवान द्वारा रचित यज्ञ, इस यज्ञ के प्रति हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी क्या हो जाती है? पहली हमारी जिम्मेवारी, सबसे पहली जिम्मेवारी कि हम अपनी स्व स्थिति सदैव अच्छी बनाकर रखें। ये सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। और जिम्मेवारी तो खैर बाबा ने दी है, पर वो सारी जिम्मेवारी इसी जिम्मेवारी पर आधारित है, अपनी स्व स्थिति बनाकर सदैव रखें। और स्व स्थिति को सदैव ही बना के रखने के लिए इसमें हमारे योग साधना का महत्वपूर्ण स्थान है, उसका विशेष पार्ट है, क्योंकि योग बल भर करके ही हम सदैव अपनी अवस्था को अचल और अडोल बनाकर रख सकेंगे। कहने में हम समय को देख रहे हैं, सभी कह रहे हैं, चारों ओर ये आवाज भी है, परिस्थितियां भी बता रही है, प्रकृति भी इस बात का परिचय दे रही है कि समय वर्तमान बहुत खराब है। खराब ही नहीं, हम कहेंगे खतरनाक भी है, और दिनों दिन समय और ही ज्यादा खराब होते जाना है। और ऐसे समय में हमारा योग बल ही हमारे सेफ्टी का साधन बनेगा। हर वातावरण में हमारी अवस्था ही हमारी मददगार बनेगी। इसलिए योग की तरफ, योग साधना की तरफ, योग अभ्यास को बढ़ाना, पुरुषार्थ को तीव्र करना अति अति जरूरी हो गया है। 2.5 अक्षर का शब्द है योग, लेकिन यदि हम सही तरीके से, सही विधि से इसका अभ्यास करें तो यही योग हमें 2500 साल स्थाई सुख शांति की प्राप्ति कराता है। योग ही एक ऐसा पुरुषार्थ है जिससे सारे खजानों के द्वार और सर्व शक्तियों के भंडार सहज ही खुल जाते हैं। समय की समीपता को देखते हुए बाप दादा भी हमें यही इशारा दे रहे हैं कि अब बच्चों का योग निरंतर और स्थिति अचल अडोल बन जानी चाहिए। तो हम अपना योग निरंतर बनाए रखें, स्थिति को अचल बनाकर रखें, ये हमारा भी लक्ष्य है, बाबा का भी इशारा है और अंतिम समय में यही मददगार रहेंगे। इसलिए ऐसी स्थिति को बनाने में वो कौन सी बातें हमें ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकती है, यदि है बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बड़ी सरल बातें हैं, आप सुनेंगे तो आपको लगे तो बड़ी सरल बातें हैं, आसानी से सभी अगर ध्यान देंगे तो आसानी से उसे कर सकेंगे। तो योग को निरंतर, स्थिति को अचल अडोल बनाने में सबसे पहली बात जो सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकती है वो है संतुष्टता का गुण। सुना, बहुत बार सुना संतुष्टता के बारे में, बड़ी सरल बात है, सिंपल बात है, बहुत बार सुना लेकिन इतना हमने उस पर अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि संतुष्ट जो नहीं रहता, कभी संतुष्ट नहीं रहता या बात बात में असंतुष्ट होता, तो कई बार हमारे सामने अपमान की बात भी आ जाती है, तिरस्कार की बात का भी सामना करना पड़ता है, असफलता भी मिलती है। और जब ये सब चीजें कदम कदम पे हमें मिलेगी तो व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट होता रहेगा, अशांत होता रहेगा, मेरा अपमान हो गया, मेरा तिरस्कार हो गया, मूड खराब, स्थिति एकदम डामाडोल। तो असंतुष्ट ये बातें तो आनी ही, वो ज्यादा से ज्यादा भी आनी आगे चलकर। संतुष्टता का गुण हमारी स्थिति को बनाने में, योग की अवस्था को बनाए रखने में मददगार है। कहते हैं ना, संतोषी सदा सुखी। जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, मैं उतने में संतुष्ट हूं, अपनी अवस्था को क्यों खराब करूं। इसलिए संतोषी सदा सुखी, जब आए संतोष धन, सब धन धूर समान, ऐसा कहते हैं ना, अगर ये धन आ गया तो सारे धन उसके आगे धूल जैसे महसूस होते हैं। तो संतुष्टता हमारे जीवन में बनी रहे, सदैव बनी रहे, हर समय बनी रहे, हर परिस्थिति में बनी रहे, उसका आधार क्या, कौन हमेशा संतुष्ट रहेगा। तो संतुष्टता का आधार है त्याग वृत्ति। जिसमें त्याग वृत्ति है, जो त्याग करना जानता है, और त्याग कहाँ होता है, जहां इच्छाएं नहीं होगी। त्याग वही हो सकता है जहां इच्छाएं नहीं है, क्योंकि इच्छाएं जहां पर है तो वो व्यक्ति कभी संतुष्ट तो रह नहीं सकता। इच्छाएं है ना, तो इच्छाएं पूरी होगी नहीं, हमेशा हमारी इच्छाएं, सभी इच्छाएं तो पूरी हो भी नहीं सकती है, और इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो अंदर में असंतोष होगा। इसलिए त्याग वृत्ति की भावना हमें संतुष्ट बनाती है। इच्छाओं का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। मोटे मोटे त्याग तो हम सब बाबा का बनने की बात कर ही लेते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी इच्छाएं या बड़ी बड़ी इच्छाएं, उसका त्याग करना कईयों को बहुत कठिन लगता है। ये हम कभी न भूलें कि इच्छाएं उसी प्रकार से संतुष्टता को खत्म कर देती है जैसे दीमक लकड़ी को, दीमक लकड़ी को खा जाती है, ऐसे इच्छाएं हमारी संतुष्टता को खत्म कर देती है। और सबसे बड़ी इच्छा तो हमारी पूरी हो गई ना, अभी मैंने आपको बताया कि बाबा ने हमारे अरमान पूरे किए, और आप सबने भी इस बात को माना कि बाबा ने हमारे सब अरमान पूरे कर दिए, तो बाकी फिर इच्छा क्या रही? इच्छा मात्र अविद्या, जो पाना था वो हमने पा लिया, अब बाकी क्या रहा? कि जो व्यक्ति जितना त्यागी होता है उतना वो माननीय सम्माननीय बनता है, वर्तमान में भी, भविष्य में भी, जीते जी भी और मरने के बाद भी। ये सभी आपने देखा, अनुभव किया, ये जो त्यागी होता उसका सम्मान तो बड़े बड़े राजा भी करते हैं। त्यागियों के दर्शन करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जंगल में राजा खुद चलकर जाते हैं। त्याग का तो सम्मान है। हम भी जो मान शान की बात है, पर जितना हम त्याग वृत्ति को धारण करेंगे उतने ऑटोमेटिक अपने आप ही मान सम्मान तो मिलेगा ही, तो असंतुष्टता भी खत्म हो जाएगी। एक सेठ जी थे धनवान, काफी बड़ा कारोबार था, लेकिन स्वभाव के बहुत कंजूस, बहुत कृपण स्वभाव था उनका, कंजूसी का स्वभाव, यहां तक कि वो अपने ऊपर भी ज्यादा खर्चा नहीं करते थे, अपने ऊपर भी ज्यादा खर्चा नहीं करते थे। इतना साधन यदि उनको, उनका रहन सहन भी कोई देखे, कोई नहीं कैसे साधन व्यक्ति से भी ज्यादा साधन उनका रहन सहन था, और खाने पीने में भी अपने ऊपर पैसा नहीं लगाते थे, ये उनका एक स्वभाव था। पर ये सब होते हुए भी एक उनका गुण बहुत अच्छा था। उनका ये गुण था कि जहां भी सत्संग होता था वो सत्संग में अपने कारोबार से भी थोड़ा सा समय निकालकर अवश्य जाते थे। सत्संग प्रेमी थे, बड़े कभी लेट भी पहुंचते, जूते चप्पल के पास में भी बैठ जाते थे, क्योंकि रहन सहन ऐसा कोई उनको बड़ा व्यक्ति समझता ही नहीं था, उनको देख करके वहां भी बैठ जाते थे, सुन लेते थे सत्संग। एक बार महात्मा जी आए, उनका सत्संग चला 8-10 दिन। सत्संग चलने के बाद आखिरी दिन सत्संग के महात्मा जी ने सभी को कहा, जो भी श्रवण करने आते थे, सत्संग सुनने आते थे, उन सभी को कहा कि परसों यहाँ भंडारा है, इसलिए भंडारा जो होगा सत्संग पूरा होने के बाद, उसमें जिसको भी जो भी दान करना है, अपना सहयोग देना है, वो सब लेकर के कल आ जाए। तो सभी अपने अपने यथाशक्ति सहयोग लेकर के गए। सेठ जी ने भी सोचा, भाई भंडारा हो रहा है, सत्संग मैंने सुना है, वो भी एक कपड़े में कुछ सोने के सिक्के और बांध करके ले गए, कुछ नोटों की गड्डी थी, काफी कुछ कपड़े में ऐसे पोटली बनाकर ले गए। सभी आते जा रहे थे, महात्मा जी के सामने इसे रखते जा रहे थे। जब सेठ जी का भी नंबर आया, उन्होंने भी कपड़ा उसको सामने ले जाके से खोल दिया। महात्मा जी ने देखा इतने सारे सोने के सिक्के, उसमें बहुत सारे रुपए हैं, देखा वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति, कोई कह नहीं सकता है कि इसके पास इतना पैसा होगा। बस वो रखकर ऐसा खोल कर जाने लगे। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी इधर आओ, इधर आओ, आओ आओ। जैसे पलट के देखा, महात्मा जी बुला रहे हैं, ठीक है आ गए, आओ सेठ जी, यहाँ पे बैठो, यहाँ पास में बैठो। खड़े रहे वो, बैठो बैठो। महात्मा जी ये तो क्या मेरे पैसे का सम्मान हो रहा है क्या, जो मैंने दिया है उसका सम्मान है ये, तो पास में बिठा रहे हैं। नहीं, ये आप भूल कर रहे हो सेठ जी, ये आपके रुपए पैसे का सम्मान नहीं, आपका धन का सम्मान नहीं हो रहा है। ये आप कहें धन तो आपके पास पहले भी था, यही सब आपके पास था, आज आपका सम्मान आपने धन का जो त्याग किया है ना, ये त्याग का सम्मान है भाई। धन तो उनके पास पहले भी रखा था, घर में रखा ही हुआ था, सबको मालूम है सेठ जी हैं ये। ये सम्मान आपके त्याग का है कि वो धन का आज उन्होंने त्याग किया, अच्छे कार्य के लिए उन्होंने त्याग करके दिया। तो कहने का भाव, जितने हम त्याग वृत्ति अपने जीवन में धारण करके रखते हैं, ये त्याग की भावना, मान शान का भी त्याग करना पड़ता है, कभी कभी औरों को आगे रखना, खुद पीछे हो जाना, वो भी त्याग करना पड़ता है। त्याग का भी बहुत बड़ी लिस्ट है, लंबी सूची है। तो जितने हमारे अंदर त्याग वृत्ति होती है, उतना व्यक्ति जीवन में संतुष्ट रहता है। और ये त्याग वृत्ति का आधार, त्याग वृत्ति किसके अंदर आएगी, कौन ये सब त्याग कर देगा, क्या ये भावना किसमें जागृत होगी, जिसको वैराग आ जाएगा। वैराग आ गया, ये संसार का अंतिम समय चल रहा है, ये सृष्टि चक्र में अंतिम समय है, हम सबको जाना है अपने घर। दुनिया का भी हम अंतिम समय देख रहे हैं, परमात्मा स्वयं धरती पर आए हैं, भाग्य विधाता आए हैं हमारा 21 जन्मों के लिए भाग्य बनाने। अचानक भी सब कुछ चला जाएगा हमारा, अचानक के पेपर भी बहुत आ जाते हैं सामने, आपने भी बहुतों के ऐसे पेपर देखे होंगे, अभी बैठे, अभी अच्छा भला पानी पिया, अभी लुढ़क गए, खत्म, दो मिनट के अंदर खेल खत्म, दो मिनट पहले हमसे बात कर रहे थे। जब ये अंदर वैराग कि पता नहीं अचानक भी सब कुछ चला जाए, अचानक हमें भी यहां से जाना पड़े, ये सारी दुनिया, ये सारे वैभव कैसे हैं, सारहीन हैं, सब मृदृष्णा समान है, कुछ साथ में नहीं जाएगा, खाली हाथ आए, खाली हाथ ही जाना है। जीते जी हम जो कर लेंगे वही हमारे साथ पुण्य की पूंजी बनकर जाएगा। मेरा यहां कुछ नहीं, सब मेरा मेरा भस्म, और तेरा तेरा ही हो जाए, मेरा मेरा सब भस्म। वैराग्य, जो वैरागी होते हैं, वैरागियों की निशानी क्या दिखती है, भक्ति मार्ग के बहुत वैरागियों को देखा होगा ना, है भस्मे लगाए हुए रहते हैं शरीर पर, साधु संतों को देखा होगा कुंभ मेले में, ऐसे साधु बहुत दिखाई दे जाते हैं, पूरे शरीर के ऊपर क्या लगी रहती है, भस्मे लगी रहती है। तो वैराग की निशानी ही, हमको तो वैसा वैराग्य नहीं बनना है कि कोई राख पाख लाकर कैसे लगा लेना है, लेकिन जो जो मेरा 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 हम जो करते हैं वो सब मेरा मेरा भस्म, स्वाहा, जो बाबा कहते हैं स्वाहा। और ये जो हमने अपना सब कुछ स्वाहा किया, बस मेरा एक ही रहा, मेरा बाबा, मैं का कौन रहा, मैं एक आत्मा, मेरा एक परमात्मा, इसके अलावा जितना मेरा वो सब हमने भस्म किया, स्वाहा किया, यही हमारी भस्म ही परमात्मा शिव का श्रृंगार बन जाती है। आपने उन्होंने भक्ति में तो शिव शंकर को एक कर दिया है, तो शंकर को वो भस्म लगाए हुए बताया है वैरागी का रूप। वैसे तो महाकालेश्वर मंदिर में भी भस्मे की भस्म आरती होती है, वहां शमशान की ताजी राख लाते हैं और उससे शिव का श्रृंगार करते हैं महाकालेश्वर उज्जैन में। शिव का श्रृंगार भस्मी है, भस्मी से उनका श्रृंगार हुआ और उस दिन उस कहते हैं आज भस्म आरती है। उस आरती का बहुत महत्व होता है। तो ये सारे जो भस्मी का महत्व हमारे यहीं से निकला है। संगम युग पर हमने जो 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 मेरा 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 अपने मान का शान का नहीं जितनी भी हमारे सब पैदा होती है सब चीजें जो परमात्मा से हमारा बुद्धि योग तोड़ती है हमारी स्थिति को हिला देती है वो सब मेरे का त्याग। ऐसा वैरागी अब समय समीप आ गया हमें जाना अपने घर। ये तो दुनिया सराय है, अब यहां से तो हमको अपने असली घर परम धाम जाना है। जब अंदर ये वैराग आ जाता है अंदर से, बाबा ने तो सारी बात हमारे अंदर की ही बताई है ना, बाहर की नहीं। बाहर से तो हम ऐसे कोई भस्मी लगाए हुए वैरागी नहीं दिखाई देंगे, अंदर का सारा वैराग। तो ऐसा वैरागी ही जो बन गया उसे सब कुछ त्याग हो जाएगा, और जो सब कुछ त्याग कर सकता वो सदा संतुष्ट तो रहेगा ही, उसका असंतुष्ट कभी होगा ही नहीं, कहीं भी नहीं होगा। हर जगह यहाँ बिठाओ तो भी संतुष्ट, सोफे पे बिठाओ तो भी संतुष्ट, जमीन में बिठाओ तो भी संतुष्ट, दो तो भी संतुष्ट, नहीं दो तो भी संतुष्ट, सम्मान करो तो भी संतुष्ट, अपमान करो तो भी संतुष्ट। इन बातों में फंसा ही नहीं। इसलिए हमारी जो स्थिति में वैराग का भी बहुत ज्यादा महत्व है। भगवान का वही बन सकता है, भगवान की पूरी पूरी श्रीमत पर वही चल सकता है जिसको ये पुरानी दुनिया से वैराग आ गया है। वैरागी का अपना कुछ भी नहीं, फिर भी सारा संसार उसका अपना है। सारा संसार अपना, उसका अपना कुछ भी नहीं। ये स्थिति ही सच्चा वैराग्य है। तो जब हम इन तीनों ही बातों के ऊपर विशेष ध्यान देंगे, सदा संतुष्ट रहना है, बातें बहुत आएगी, ऊपर नीचे भी आएगी, असंतुष्ट करने वाली, अशांत बनाने वाली, तनावग्रस्त करने वाली बातें भी आएगी। लेकिन कोई बात, ये भी एक पार्ट है, ये कोई हिसाब किताब है, उसमें भी संतुष्ट, अपनी स्थिति को नहीं हिलाना। संतुष्ट रहोगे तो स्थिति भी बनी रहेगी। और दूसरा त्याग व्यक्ति, वैसे सब छूटना ही है, सबको छोड़ के जाना ही है। और सबसे वैराग, एक से राग, बस सबसे वैराग। राग माना प्यार, प्रेम, आसक्ति, एक से मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। जब हम इस स्थिति में अपने को स्थित करेंगे, ऐसी अपनी स्थिति बना लेंगे, अभी ये पुरुषार्थ तो हमें अभी ही करना है। पुरुषार्थ हम कहते हैं ना, भाई पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, हम पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ का अर्थ वास्तव में होता है परिवर्तन। अभी हम पुरुषार्थी हैं, है ना, कोई भी कहेगा भाई आपका परिवर्तन ज्यादा नहीं हो रहा, भाई अभी पुरुषार्थी है ना, अभी बने थोड़ी संपूर्ण नहीं। पुरुषार्थी का मतलब है दिनों दिन हमारा परिवर्तन होना चाहिए, तभी सही अर्थों में हम पुरुषार्थी हैं। और पुरुषार्थ को ऐसा बनाने में, अपना परिवर्तन करने में, बाबा तो दुनिया का परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात हमेशा बाबा कहते हैं और हम कईयों को सुनाते भी रहते हैं, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। तो स्व परिवर्तन माना कौन सा परिवर्तन, बाबा कौन सा हमारा परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन हमारा ये चाहते हैं, ऐसा परिवर्तन हो। और ये तीनों बातों का जो परिवर्तन एक दूसरे से कनेक्टेड है, वैरागी बन गया त्यागी हो जाएगा, त्यागी हो गया तो संतुष्ट हो ही जाएगा। ये परिवर्तन के लिए सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है, अपने ऊपर पूर्ण रूप से सुबह से शाम तक हर कर्म में, हर सोच में, हर बोल में, हर प्रकार के व्यवहार में जितना हमारा अटेंशन रहेगा, अटेंशन की आवश्यकता है। अटेंशन रहेगा तो ये सब बातों को अपने जीवन में लाना कोई कठिन नहीं है, बड़ा सहज बड़ा सरल है। एक बार राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री कोई ऐसा उपाय नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है जो कार्य व्यवहार करते हुए भी हम मोक्ष को प्राप्त कर लें, कार्य को भी नहीं छोड़े हम, व्यवहार का भी त्याग ना करें और हम मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बन जाएं, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है? मंत्री का है, महाराजा है वो भी, तो बताओ मुझे कौन सा उपाय है, मैं करना चाहता हूं। महाराज वो उपाय तो वो गोदावरी नदी के उस पार एक संत रहते वो बताएंगे, चलो उस संत के पास चलते हैं। चले, दोनों चले, चलते गए, नदी को पार किया, पार करने के बाद जंगल चालू हो गया। जंगल में चलना चालू किया, कुछ कदम चले ही, 5-7-8 कदम, मंत्री जिनका महाराज एक बात आपको बताना भूल गया, रहा बताओ, संत उनसे ही मिलते हैं जो पूरा समय रास्ते में इस बात का ध्यान रखते हुए चलेंगे कि उनके पैरों के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा मर ना जाए, कोई भी जीव जंतु छोटा सा, छोटे से छोटा सा भी, इस बात का जो ध्यान रखता हुआ जाएगा संत उनसे ही मिलेंगे। ठीक है, आपने बता दिया, मैं बिल्कुल ध्यान रखता हुआ चलता हूं। महाराज राजा बहुत नीचे, पूरा समय नीचे देखते 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 ध्यान रखते हुए चलने लगे, एक एक कदम पे बड़ी सावधानी रखी, कोई चींटा है, कोई चींटी है, कोई छोटा सा कीड़ा है, कोई मेरे पैरों के नीचे तो नहीं आ रहा है। पूरा समय नीचे ध्यान रखते 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 वो संत की कुटी के सामने पहुंच गए। संत बाहर ही बैठे हुए थे, दोनों पहुंचे, इन्होंने प्रणाम किया, संत ने भी मुस्कुरा के उनका स्वागत किया, आओ महाराजा इस कुटिया में आपका स्वागत है, आओ विराजमान हो जाओ, बैठो। बोलो भाई आज यहाँ कैसे आना हुआ? राजा ने कहा कि मैंने मंत्री जी से एक बात पूछी थी कि हम गृहस्थ व्यवहार में रहते, क्योंकि मैं राजा हूँ, मुझे अपनी प्रजा का भी ध्यान रखना है, राज्य का कारोबार भी चलाना है, ये सब कार्य एक मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हुए भी मेरी बहुत चाहना है मोक्ष की प्राप्ति की, तो क्या ये सब करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्या? कि कार्य व्यवहार में रहने वाले, अपने जिम्मेवारियों का निर्वाह करने वालों के लिए क्या मोक्ष का कोई रास्ता नहीं है? केवल जिन्होंने संन्यास किया है वही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? ये मैंने प्रश्न इनसे किया तो इन्होंने आपका नाम बताया कि आप हमें वो रास्ता बताएंगे, वो विधि बताएंगे। ठीक है, आपको हम जरूर बताएंगे वो रास्ता, लेकिन पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दो कि आप मेरे पास मिलने आए, यहाँ तक आते हुए मुझे ये पहले बताओ कि आपने देखा क्या क्या रास्ते में? सोच में पड़ गए कि देखा तो मैंने कुछ भी नहीं है, और महा संत पूछ से देखा क्या वो सब मुझे बताओ। नहीं नहीं, आपने जो देखा हो नहीं देखा जो भी हो वही सत्य बात मुझे बता दो। राजा ने कहा कि मैं जब चला था तो मुझे हमारे मंत्री जी ने बता दिया था कि संत उनसे ही मिलते हैं जो इस बात का ध्यान रखते हुए ही वहां तक पहुंचेगा कि उनके पैरों के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा मर न जाए, कुचल न जाए। तो मेरा पूरा ध्यान पूरा, मैं तो उसी के लिए सावधान होके चल रहा था, मेरा ध्यान तो पूरा वही था कि ये नुकसान ये हिंसा मेरे से ना हो जाए, वरना संत मुझे मिलेंगे नहीं। इसे मैंने कुछ भी नहीं देखा। संत ने कहा यही तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब है कि आप अपना कारोबार करो, अपना कर्तव्य का निर्वाह करो, बस इस बात की सावधानी रखो कि आपके द्वारा किसी को दुख न मिले, आपके द्वारा कोई पाप कर्म न हो जाए। यदि इस बात की सावधानी से रहेंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए जीवन में चलेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति के अधिकारी आप भी हैं। महाराज को बड़ी खुशी हुई। कहने का भाव यह कि बाबा भी हमें यही बात पक्की कराते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है। बस सावधानी यही रखनी है कि मनसा वाचा कर्मणा हमारे द्वारा कोई पाप कर्म ना हो जाए, हमारे द्वारा किसी को दुख की प्राप्ति ना हो जाए, ऐसा कोई कर्म ना हो जाए जो मेरे पाप के खाते में, मेरे विकर्म के खाते में जमा हो। इसी सावधानी के साथ हमें जीवन जीना है और इसी सावधानी के साथ ईश्वरी याद में रहते हुए हम जो जीवन जीते हैं यही है हमारे जीवन जीने की कला, जिसको हम कहते हैं राजयोग, अर्थात राजयोगी माना जो कर्म करते हुए भी ईश्वरी याद में रहता है, सही अर्थों में वही कर्मयोगी है। तो योग को कर्मयोग और स्थिति को अचल अडोल बनाने में ये जो बातें हैं, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बस जरूरत है अटेंशन देने की, जरूरत है सावधानी की। यदि सावधान होके रहते हैं, खास ध्यान रखते हैं अपने कर्मों के ऊपर, अपनी वाचा पर, अपने सोच पर, और वैसे भी जो ईश्वरी याद में हमेशा रहते हैं उनसे विकर्म तो हो ही नहीं सकते हैं। ईश्वर की याद में है, ईश्वर से मन उसका जुड़ा हुआ है, तो उसके मन में दूसरी बात कैसे आ सकती है। ये बाबा कहते हैं बच्चे निरंतर योगी बनो, समय को देखो कितना समय समीप आ रहा है, अंतिम समय पास में आ गया है, पता नहीं कौन से क्षण मेरा अंतिम पेपर भी आ जाए और उसमें भी मैं फेल ना हो जाऊं। हमको संपूर्ण स्थिति अपनी बनानी है, कर्मातीत हमें बनना है, कर्म भी करना है, कर्तव्य का निर्वाह भी करना। बाबा ने देखो घर भी नहीं छुड़ाया, अपने कर्तव्य को भी करना है, घर को भी संभालना है, बच्चों की भी संभाल करनी है और संपूर्ण स्थिति को भी प्राप्त करना है। तो हे बातें ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम खास, फिर मैं रिपीट कर रही हूं, कौन सी बात का बहुत ध्यान रखेंगे। पहला योग आपका टूटेगा नहीं कभी भी, निरंतर हो जाएगा, स्थिति अचल बन जाएगी, स्थिति प्रज्ञ स्थिति अवस्था हमारी हो जाएगी। पहला, जीवन में संतुष्टता, ये जीवन में एक पक्की धारणा अपनी बना लो। दूसरा, त्याग वृत्ति, त्याग के लिए पकड़ना नहीं, मेरा तो मेरा पर तेरा भी मेरा हो जाती कईयों की वृत्ति ऐसी ही, मेरा तो मेरा है ही पर जो तेरा है ना हिस्से का वो भी सब मेरा ही है, तो ये त्याग वृत्ति का है तो हड़प नीति हो गई है ना। तो जीवन में कहीं भी किसी भी समय ये चीज आ जाती है, इसका त्याग करो। बाबा ने ये नहीं सिखाया है, मुझे मेरे हिस्से का जो मिल रहा है मैं उसमें संतुष्ट रहूं। तो त्याग, और फिर बाबा ने और भी कई बातों का त्याग, मेरा मेरा का त्याग, मान शान का त्याग, इच्छाओं का त्याग। ये दुनिया एक इच्छा थी भगवान को पाने की, वो मेरी इच्छा पूरी हो गई, इच्छा मात्र अविद्या। और तीसरा फिर वैराग वृत्ति, वैराग। बाबा का ज्ञान मिला, आप अपने उन दिनों को याद करो जब ज्ञान में आते हैं शुरू शुरू में, और जैसे ही हमें कोर्स मिलता है सृष्टि चक्र का ज्ञान मिलता है, और जब उसमें बताया जाता है ये संगम युग चल रहा है, ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, भगवान अपने वायदा अनुसार आ चुके हैं, और सुंदर दुनिया हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, ये पुरानी दुनिया जाने वाली है, इसका समय हो गया पूरा, सृष्टि अंतिम श्वास पर पड़ी हुई है, और हमारी सुंदर दुनिया आने वाली है, वो पिता परमात्मा हमारे लिए जो ये ज्ञानी और योगी बनेंगे उनके लिए एक सुंदर विश्व का विश्व बना रहा है, तैयार करा, उसके लिए तो यज्ञ बनाया है, ये यज्ञ की स्थापना क्यों की है, सुंदर विश्व बनाने के लिए। इसलिए मुझे भी पहली अपनी ये जिम्मेवारी समझनी है, इस यज्ञ के प्रति बहुत जिम्मेवारी तो है, वो तो है बहुत लंबी, लेकिन सबसे पहली जिम्मेवारी क्या समझना है, इस यज्ञ के प्रति अपने आप को जिम्मेवार, मैं अपनी अवस्था को यानी स्व स्थिति को हमेशा अच्छी बना के रखो, यही सबसे बड़ा सहयोग परमात्मा को चाहिए आपका। और अभी सभी बच्चों की ये स्थिति ऐसी नहीं बनी है, बाबा का काम भी अभी रुका हुआ है, नई दुनिया आने का भी जो विलंब हो रहा है वह हमारे कारण ही हो रहा है, ये परिवर्तन जो टोटल परिवर्तन कि बाबा कहते बच्चे आपके कारण है नई दुनिया आने में रुकी हुई है, अभी विनाश भी रुका हुआ है। इसलिए जब हम इस जिम्मेवारी को बहुत सीरियसली लेंगे, गंभीरता से लेंगे, तो किसी भी परिस्थिति में कोई भी वातावरण में कैसी भी बातें तो बहुत आएंगी, पर कभी भी हम अपनी अवस्था को खराब नहीं करेंगे, अपनी अवस्था को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, अवस्था को स्थिर रखेंगे, अच्छा लडोल बना के रखेंगे, ठीक है। ओम शांति।
अपने साथ है, करने देखी क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में सिक्के हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
ईश्वर अपने साथ है।